मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 24 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सभी के साथ ही मित्रों, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक और नौजवान साथी का, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है बबलू चौहान, जो नीमच मध्य प्रदेश से हैं। तो बबलू, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके बाद मैं आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा सोनू कुर्मी को, जिन्होंने मेल के द्वारा सूचित किया है कि अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हुई है, जिसमें उन्हें DYSP का पद मिला है, यानी कि स्टेट सिविल सर्विस में जो पुलिस सर्विस के लिए जो हाईएस्ट रिक्रूटमेंट का लेवल है उसमें उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें उन्हें सफलता मिली है। तो सोनू, इसके लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत आपको बधाइयां और भविष्य में इससे भी बेहतर सफलताएं प्राप्त करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं न्यूज एनालिसिस की। अक्सर यही होता है और सच पूछे तो कल की न्यूज में भी यही है। आप जानते हैं कि शनिवार और रविवार को छुट्टियां होती हैं, केंद्र की तो छुट्टी होती है, कुछ राज्यों की भी छुट्टियां होती हैं, सेकेंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोविजन है, लेकिन केंद्र सरकार की तो छुट्टी होती है। तो दोस्तों, जब केंद्र सरकार की छुट्टी है तो बट नेचुरल है कि या तो राजनीतिक कैबिनेट जैसी चीजें हों या आपके सरकारी तंत्र हो, मंत्रालय हो, सब बंद होते हैं, तो न्यूज भी कुछ खास नहीं बन पाती। और वही आपने कल के रेडियो न्यूज में महसूस किया होगा और टीवी न्यूज भी, दूरदर्शन की भी जो खबर होगी वो कोई उससे अलग नहीं होगी। बस एक न्यूज जो थी, उधर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा। मित्रों, आपने देखा कि कल जो हमारा जो नीति आयोग है, इसकी बैठक हुई है, इसके संचालन परिषद की, और उसमें हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आए और उन्होंने सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपने अपने स्टेट के बारे में बात बताई। और आपको मालूम है कि जो नीति आयोग है ये बेसिकली तो पॉलिसी मेकिंग है, गाइडेंस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो योजना आयोग की जगह पर हमारे नए अभी के प्रधानमंत्री जी ने गठित की है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो काफी कुछ प्लानिंग कमीशन के जैसा ही है, क्योंकि नीति आयोग जो विजन, जैसे मान लीजिए 15 साल का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, पंचवर्षीय योजनाएं तो खत्म ही हो गई, आपको मालूम होगा, अब वो लंबी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि 15 साल का विजन स्टेटमेंट कि हम 15 साल में क्या करना चाह रहे हैं। फिर ये होगा कि उस 5 साल में, उस 15 साल को फिर आप 3 भागों में बांटेंगे, तो 5-5 साल में हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद, फिर उसके बाद 3 साल का जो एक्शन प्लान है कि अच्छा 3 साल में हम इतना हासिल करेंगे, फिर इतना हासिल करेंगे, ताकि 3 साल के बाद उसको फिर से रिव्यू किया जा सके कि हम अपने टारगेट के करीब हैं कि नहीं है। तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का तो हाल आप देख रहे थे कि दो दो तीन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में एक पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को हासिल किया जा रहा था। ठीक है, समय के बदलाव के साथ इस तरह के भी बदलाव होने चाहिए। इसका एक बहुत ही जो खूबसूरत जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ये है कि जो इसकी जो संचालन परिषद है, संचालन परिषद में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो उसके सदस्य हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं, और फिर जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक उसके सदस्य हैं। अब यहां जो नीति आयोग जो अपना विजन देती है, जो अपना प्लान करती है, उसको इस संचालन परिषद से पारित कराना होता है। अब इस संचालन परिषद में आप देखें कि मेंबर्स कौन है, राज्य हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र प्लस राज्य, और इसके जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नो डाउट कि इतना बड़ी संस्था है और तो प्रधानमंत्री ही उसके अध्यक्ष होने चाहिए, वो गरिमापूर्ण बात है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको एक बहुत अच्छा बड़ा प्यारा सा फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। फेडरल स्ट्रक्चर ठीक है, नीति आयोग केंद्र के द्वारा स्थापित है, उसके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं केंद्र सरकार ही करती है, उसमें राज्यों की कोई तरजीह नहीं है। और यदि नीति आयोग की चीजों को ज्यों का त्यों पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो सीधी सी बात होगी कि जो केंद्र है वो अपनी योजनाओं को, अपने विजन को, अपनी आइडियाज को पूरे के पूरे देश पे थोप रही है, राज्यों पर थोप रही है। तो वो फेडरल स्ट्रक्चर ना होकर के वो एक एकात्मक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे कि केंद्र ही सर्वोपरि है। लेकिन ये जो नीति आयोग के बाद जो कल बैठक हुई है वो दिखाता है कि नहीं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये संघीय स्वरूप है। संघीय स्वरूप, सब राज्य अब आए हुए हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, सब आए हुए हैं और उस पर वो बातचीत करें कि बताइए ये विजन है, कहां क्या बदलाव होने चाहिए और क्या नहीं, और इसके बाद उसको स्वीकार कर लें और उसके आधार पर काम करना शुरू कर दें। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। योजना आयोग के समय में भी ऐसा था, लेकिन उस समय थोड़ी सी उसमें अंतर भी था, खैर अब उस पर अभी नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, उसकी कल बैठक हुई और आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट जो न्यूज में आपने सुने, उन्होंने एक नाम दिया जो एक नया शब्द है, आजकल खूब चलता है क्रिकेट की भाषा में, टीम इंडिया। अभी तक हम संघवाद की बात सुनते थे, फिर सहयोगात्मक संघवाद की बात होने लगी, सहकारी संघवाद की बात होने लगी, अब एक नया वर्ड आया है, टीम इंडिया। मतलब भारत का अगर विकास करना है, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे बार बार कहते भी हैं, तो राज्यों के विकास के बिना वह संभव नहीं है। सीधी सी बात है, केंद्र की अपनी कोई टेरिटरी उस तरीके से तो है नहीं, केंद्र सरकार की अगर टेरिटरी है तो पूरा देश है, और जो राज्य विकास जो होना है वो राज्यों के माध्यम से होना है, तो बट नेचुरल है कि बिना राज्यों के विकास के केंद्र भारत का विकास नहीं हो सकता। तो इस टीम में पूरे के पूरे हमारे जो राज्य के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो एक तरह से शामिल हैं, और केंद्र उसका कैप्टन, या यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री उसके कप्तान हैं। तो ये उन्होंने टीम इंडिया का शब्द मतलब दिया है। तो बेसिकली ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसी को ही ठीक, उसी का ही एक स्वरूप है। और दोस्तों, दूसरी जो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में नई सरकार ने जो परिवर्तन किया है वो है जीएसटी, जीएसटी काउंसिल भी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी एक परिषद बनाई गई है, उसका भी स्ट्रक्चर इस तरीके का ही है। उसमें चीफ मिनिस्टर की जगह वित्त मंत्री या जो भी भेजना चाहे वो होते हैं, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, जो कि वित्तीय मामला है। तो जीएसटी का भी जो स्ट्रक्चर है, जो सारे डिसीजन लेगा, इनफैक्ट वह स्ट्रक्चर पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये दो ऐसे तथ्य हैं जो हमारे एक तरीके से टीम इंडिया के कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत बनाते हैं। और ये बात मैंने थोड़े से विस्तार से आपसे इसलिए कही है क्योंकि मैंने देखा है कि मेंस में जनरली फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के एक साल दो साल में एक आध प्रश्न आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज एनालिसिस के बारे में कुछ बातें थी। फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले आपसे वायदा किया था विजय माल्या के मामले में। तो अब मैं थोड़ी सी आपको जो क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसे हम याराना पूंजीवाद, दोस्ताना पूंजीवाद कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये नया शब्द नहीं है, पिछले करीब मैं समझता हूं कि 6-7 साल से तो काफी चर्चा में आया है। इससे पहले हालांकि इसकी बात इतनी ज्यादा नहीं होती थी, इससे पहले कैपिटलिज्म की बात होती थी, पूंजीवाद की बात होती थी। दरअसल फ्रेंड्स, ये जो पूंजीवाद है इसी को ही कहीं कहीं आपको अलग शब्द के रूप में पढ़ने को मिल जाएगा, यही मर्केंटलिज्म भी मिल जाएगा, ये कारपोरेटिज्म भी मिल जाएगा, निगमीकरण या वाणिज्यिककरण इस रूप में भी ये शब्द मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट ये याराना पूंजीवाद के समानांतर नहीं है। वैसे भी जब आप इतिहास देखेंगे, वित्तीय इतिहास पूरे विश्व का देखेंगे, है ना, तो कृषि व्यवस्था, फिर औद्योगिक क्रांति के बाद फिर आप वाणिज्य क्रांति में आते हैं, फिर आप पूंजीवाद में एंटर करते हैं, है ना, तो वो एक अलग चरण है। यहां जिस हम पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, यह बेसिकली एक निगेटिव टर्म है, यह नकारात्मक शब्द है। याद रखें कि पूंजीवाद अपने आप में नकारात्मक शब्द नहीं है। हाँ, पूंजीवाद की कुछ के कुछ अवगुण हो सकते हैं, उसको लेकर के आप पूंजीवाद की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में नकारात्मक शब्द नहीं है। ये केवल एक आर्थिक फिलॉसफी है, एक इकोनॉमिकली इकोनॉमिक फिलॉसफी है। ये एक ऐसी व्यवस्था, अर्थ देश की एक ऐसी अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीति जिसमें किसी भी व्यक्ति को लाभ कमाने की छूट है और निजी संपत्ति रखने का अधिकार है। बस उसको करना यह होगा कि सारी चीजें एक विधान के तहत होनी चाहिए, वैधानिक रूप में की जानी चाहिए। यह पूंजीवाद है। और साम्यवाद आप जानते हैं कि जहां निजी संपत्ति समाप्त है, आप निजी संपत्ति नहीं रख सकते, जो भी उद्योग होंगे, जितनी भी संपत्ति होगी, उस पर राज्य का अधिकार होगा, वो साम्यवाद है। और समाजवाद इन दोनों के बीच का है, सैंडविच है। कुछ अधिकार भी, कुछ निजी पूंजीपति भी है, निजी उद्योग भी है, और कुछ सरकारी उद्योग भी है, जिसमें हम भारत को लेकर चलते हैं। भारत की इकोनॉमी को आप जानते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी हम कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो याराना पूंजीवाद है, ये बेसिकली 1990 के बाद अधिक चर्चा में आया। हमारे एक होम सेक्रेटरी वोरा जी हुआ करते थे, उनकी एक कमेटी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि दरअसल भारत में हो ये रहा है कि तीन समूह उन्होंने चिन्हित किए। एक नेता वर्ग राजनीति के क्षेत्र में है, दूसरा उन्होंने चिन्हित किया पूंजीपति उद्योगपति, और तीसरा उन्होंने चिन्हित किया ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह। उन्होंने उसमें यह कहा कि ये जो तीनों वर्ग हैं, राजनीति कह लीजिए, अर्थशास्त्र उद्योगपति, और इधर प्रशासन ब्यूरोक्रेसी, इन तीनों की आपस में साठ गांठ हो गई है। इन तीनों ने आपस में एक गुट बना लिया है, और गुट इस तरीके से बनाया है कि तुम मेरी करो, मैं तुम्हारी करूंगा, और ये सब एक दूसरे के हित में लगे हुए हैं, और एक दूसरे के हित को साधने के चक्कर में आप यूं कह लीजिए कि जो राष्ट्रीय हित हैं और जो सामाजिक विकास है, वह मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। तो इसको उन्होंने, इस गठबंधन को उन्होंने एक बड़ा, एक अपवित्र और यूं कह लीजिए कि अवैधानिक गठबंधन नाम दिया। इसे आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे एक पूंजीपति है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में वो चंदा देता है, डोनेशन देता है, पार्टी को पैसा चंदा देता है, और ये छोटे मोटी राशि नहीं होती है ना, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके बारे में आप सोचिए। तो ये चंदा देते हैं और सभी पार्टीज को देते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी को देते हैं, सभी पार्टी के लोगों को देंगे, कोई ना कोई तो जीतेगी ही पार्टी, और फिर उसके लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, जो कुछ भी होगा सत्ता में आएंगे। तो अब ये पूंजीपति क्या करते हैं कि इस तरह की सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि सरकार इस तरह की आर्थिक नीतियां बनाए जिससे कि उनके उद्योगों को फायदा पहुंचे, और चूंकि इन्होंने पैसा दिया है तो सरकार भी कहीं ना कहीं दबी महसूस करती है, दबा हुआ महसूस करती है। तो अब आपको गठबंधन का एक रूप दिखाई दे गया मित्रों। इसीलिए आपने देखा, पहले तो ये पैसा काफी कुछ कैश में दिया जाता था, अब आपने देखा है कि इस बार के बजट में व्यवस्था की गई कि 2000 रुपए से अधिक आप कैश में नहीं ले सकते। तो इसे आप कह सकते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म को कंट्रोल करने का एक छोटा सा उपाय है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह से एक आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप जानते हैं। देखिए, अब सरकार नीतियां बना रही है, आम आदमी को पता नहीं चलता है कि ये नीतियां क्यों बनाई जा रही है, उनको तो यही लगता है कि हमारे हित में बनाई जा रही है, राष्ट्र के हित में बनाई जा रही है, और सरकार भी यही करती है। तो उसके पीछे हिडन एजेंडा जो होता है, किसी उद्योगपति विशेष को लाभ पहुंचाना, अब आप कैसे जान सकेंगे कि ये निर्णय कैसे लिया गया। तो अब आपके पास आरटीआई आ गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप फाइल तक की नोटिंग मांग सकते हैं कि ये निर्णय कैसे लिया गया। तो आरटीआई को भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्रोनी कैपिटलिज्म पर नियंत्रण रखने का एक तरीका है। तीसरा जो है फ्रेंड्स, कल की न्यूज में भी आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो ई मार्केटिंग का जो जमाना आ गया है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, इससे पारदर्शिता आएगी, ईमानदारी होगी। पहले होता क्या था कि जैसे नीलामी देना, स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपको मालूम है, कोई चीज किसी को माइनिंग उसको खदान के उसके नाम पर करनी है, इस चीज का लाइसेंस उसको देना है, कोई बोली लग रही है वहां इसको फेवर करना है, तो किया जा सकता था, करते ही थे लोग। और अब क्या हो गया कि अगर वो ई के माध्यम से हो रही, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हो रही है, तो पूरे देश को पता है कि ये होने जा रहा है, इस तरीके से होगा, इस डेट को होगा, तो उसमें पूरा राष्ट्र शामिल है। अदरवाइज चुपके से पहले कुछ लोगों को बता करके आप उनको सौंप सकते थे काम। 2G स्पेक्ट्रम के मामले में इसी तरीके से किया गया कि स्थापित नियमों को एकदम बदल दिया गया, मतलब उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, इसलिए क्योंकि वो ताकि अपने लोगों को 2G स्पेक्ट्रम दे सके। तो ये जो तीन चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं फ्रेंड्स, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा आधार है। यानी यूं कह लीजिए कि जो ब्लैक मार्केट को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो क्रोनिक कैपिटलिज्म काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। जो तीसरा इसमें जो ग्रुप है वो नौकरशाहों का है, ब्यूरोक्रेट्स का है। देखिए अंततः निर्णय ब्यूरोक्रेट्स को लेना होता है, तो इसमें यूं कह लीजिए कि ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो जाते हैं, वो भी उद्योगपतियों को सपोर्ट करेंगे, या यूं कह लीजिए कि पॉलिटिशियन जो कह रहा है उनकी बात मानेंगे। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो हमारा सिविल सर्विस डे आया था उसमें साफ कहा कि आप डरिए मत, आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहिए जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर राजनेताओं के सामने वो झुकना शुरू कर देंगे जो जनरली होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि राजनेता तो अस्थायी कार्यपालिका के हिस्से हैं, कुछ समय के बाद वो चले जाएंगे, फिर चुनाव होगा तो हो सकता है चुनकर आए या न ही आए, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको तो लंबी पारी खेलनी होती है, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जिंदगी इसी नौकरी में ही गुजरनी होती है सामान्य तौर पर। तो ऐसी स्थिति में उनकी आप कह लीजिए कि जो नौकरी है उस पर कहीं किसी तरह का कोई कुठाराघात नहीं होना है, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें सीधे कहा कि आप जो सही है वह बताइए और सामने आइए, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये जो गठबंधन है दोस्तों, यही क्रोनी कैपिटलिज्म है, मतलब तीन लोगों में दोस्ती है। जो क्रोनी शब्द है, जो याराना है, वो तीन लोगों का याराना है, राजनीति, उद्योगपति और नौकरशाह। ये तीनों ने आपस में दोस्ती गांठ ली है और उससे फिर राष्ट्र की जो नीतियां हैं या उसी तरह से कार्यों का संचालन हो रहा है। तो मित्रों, इतने थोड़े से वक्त में जितनी भी बातें मैं आपको बता सकता था मैंने बताने की कोशिश की है। मैं एक तथ्य आपके सामने और रख दूं कि अब तो क्रोनिक कैपिटलिज्म का भी एक इंडेक्स आने लगा, देख रहे हैं ना, हर चीजों के इंडेक्स आने लगे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, सोचिए कि जो रशिया साम्यवादी व्यवस्था में इतने लंबे समय तक रहा है वो क्रोनिक कैपिटलिज्म में टॉप पर है। मतलब वहां की जो टोटल जीडीपी है उसका 18% क्रोनिक कैपिटलिज्म के तहत है, 18%। भारत की रैंकिंग उसमें 9th है और उसका जो टोटल जीडीपी का 3.4% क्रोनिक कैपिटलिज्म के अंतर्गत है, 3.4% ऑफ टोटल जीडीपी। अब चाहे तो आप एक अच्छा आंकड़ा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मित्रों, अब न्यूज के बारे में इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इन्हें देख लेंगे। मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इसमें जो सोशल मीडिया पर जो क्लिपिंग्स है, इसमें जो यूनाइटेड एयरलाइंस की घटना है आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें और थोड़ा सा दिमाग में रख भी लें कि जब भी इसकी बात आएगी, मान लीजिए कि सोशल मीडिया की, तो आप एक घटना की चर्चा कर सकेंगे। ये विश्व प्रसिद्ध घटना है, आपने भी इसे पढ़ा होगा, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, पंचायती राज पर एक क्लिपिंग है जो नरेंद्र सिंह तोमर जी की का जो आर्टिकल है, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, इसके आखिरी में देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है और हो सकता है कि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उन्होंने कहा है कि पंचायती राज प्रणाली का जो मुख्य परिणाम है वह सामाजिक परिवर्तन के रूप में सामने आया है। पंचायती राज्यों के माध्यम से ग्राम्य समाज का सशक्तिकरण हुआ है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और इसके बाद उन्होंने, मतलब ठीक, अच्छा आर्टिकल है, इसमें आपको चूंकि गवर्नमेंट मंत्री ही है तो जो आंकड़े हैं वो आधिकारिक आंकड़े हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आपको नोट भी कर लेने चाहिए। और जो अभी मैंने बात बताई है इस पर आप सब विचार कीजिए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है जैसे आपके जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर का। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। दोस्तों, ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से मित्रों, कुछ फ्रेंड्स के मैं नाम ले रहा हूं, वह चेतन प्रकाश वर्मा अलवर राजस्थान से, सिमरनजीत सिंह लुधियाना पंजाब से, अभिषेक चौधरी मुरादाबाद यूपी से, अनुराग गुप्ता इंदौर मध्य प्रदेश से, सुमन कुमारी रामगढ़ झारखंड से, शैलेंद्र कुमार शीतलपुर यूपी से, पूजा शर्मा जयपुर राजस्थान से, शुभम गुप्ता इलाहाबाद से, खुशबू रघुवंशी रोशनी रघुवंशी गुना मध्य प्रदेश से, हर्षिता गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, हिमानी गर्ग, निशा लांजेवर भंडारा महाराष्ट्र से, पवन सिंह सोहल गुना मध्य प्रदेश से, वीरेंद्र कुमार बेगूसराय बिहार से, इलियास जैसलमेर राजस्थान से, मनीष दुबे विपुल लखनऊ उत्तर प्रदेश से, अक्षय पवार बैतूल मध्य प्रदेश से, दुबे पवन कच्छ गुजरात से, गंगाराम बेनीवाल बाड़मेर राजस्थान से, शशिकला चौहान मुंबई से, अभिषेक सिंह, सुमन कुमारी रामगढ़ झारखंड से, इमरान हुसैन मोतिहारी बिहार से, मनीष सिकरवाल बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, अनुराग गुप्ता, मोहिनी रावत लखनऊ उत्तर प्रदेश से, नफीस अहमद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, रूपेश कोल्टे कुमारी जया बिहार से और प्रहलाद पाटिल महाराष्ट्र से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इनमें से गंगाराम बेनीवाल जो बाड़मेर राजस्थान से हैं, उन्हें मैं विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने afis.com के बारे में काफी लोगों को बताया है और उनसे वो लगातार इस बारे में बात भी करते रहते हैं। तो गंगाराम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।